एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में झांक रहे हैं जिन्होंने 20वीं सदी पर वाकई बहुत गहरी छाप छोड़ी, बर्ट्रेंड रसल।
हाँ, मतलब गणितज्ञ, दार्शनिक, समाज सुधारक, शांति कार्यकर्ता, क्या नहीं थे वो?
बिल्कुल, उनके कई रूप थे। और आज हमारी गाइड हैं एसी ग्रिलिंग की लिखी उनकी जीवनी रसल।
और देखें, रसल आज भी इतने जरूरी क्यों हैं? बात यह है कि उनकी जो तर्क करने की हिम्मत थी, सच के लिए खड़े होने का जज्बा और इस उलझी हुई दुनिया को समझने की उनकी लगातार कोशिश, ये सब आज हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
हाँ, खासकर आज के जमाने में जब चारों तरफ से विचारों और सूचनाओं की जैसे बाढ़ आई हुई है।
सही कहा। तो ये चर्चा रसल के जीवन से ये सीखने पर होगी कि कैसे, मतलब एक अकेला इंसान भी सोचने की ताकत और दिल के जुनून से दुनिया पर कितना असर डाल सकता है।
काफी साफ तस्वीर देते हैं।
तो पहले लेखक पर थोड़ी बात कर लें, एसी ग्रिलिंग।
हाँ जरूर, एंथनी क्लिफर्ड ग्रिलिंग ब्रिटेन के जाने माने दार्शनिक और बुद्धिजीवी हैं।
हाँ, एकेडमिक दुनिया में तो उनका बड़ा नाम है ही।
बिल्कुल।
पर वो मुश्किल फिलोसॉफिकल आइडियाज को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भी जाने जाते हैं।
अच्छा, पर क्या चीज उन्हें रसल पर लिखने के लिए खास बनाती है? एक तो ये कि उनकी अपनी जो विशेषज्ञता है वो दर्शन के उन्हीं इलाकों में है, जैसे ज्ञान कैसे मिलता है, सच क्या है, जहाँ रसल ने भी जबरदस्त काम किया था।
सही।
और दूसरा, वो खुद भी पब्लिक में अपनी बात रखते हैं, तो वो रसल के सामाजिक सरोकारों को शायद ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या उसी परंपरा से आने के कारण, मतलब ग्रिलिंग रसल से, एक जरूरी आलोचनात्मक दूरी रख पाए होंगे? ये भी तो हो सकता है।
ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, वैसे ग्रिलिंग की खूबी ये भी है कि उनमें अकादमिक गहराई तो है, लेकिन वो आम पाठक के लिए चीजों को आसान बना सकते हैं, कुछ कुछ रसल की ही तरह।
अच्छा।
और हाँ, वो उसी विश्लेषणात्मक दर्शन यानी एनालिटिक फिलॉसफी की परंपरा से आते हैं जिसकी नींव रसल ने रखी थी, तो उन्हें रसल के तकनीकी काम की भी गहरी समझ है।
तो शायद ये उन्हें मदद करता होगा रसल के दोनों पहलुओं को जोड़ने में।
हाँ बिल्कुल, सोचने वाले दार्शनिक और दुनिया में दखल देने वाले एक्टिविस्ट, इन दोनों को।
तो ये किताब असल में है क्या, सिर्फ जन्म से मृत्यु तक की कहानी? मुझे ऐसा लगता नहीं।
नहीं नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये एक तरह से बौद्धिक हिम्मत और एक सोची समझी जांची परखी जिंदगी जीने का नजरिया पेश करती है। सही कहा आपने। किताब का एक बड़ा आइडिया यह है कि रसल ने दिखाया कि तर्क यानी रीजन वो सिर्फ किताबों तक सीमित रखने की चीज नहीं है।
अच्छा।
हाँ, इसे गणित से लेकर समाज सुधार और राजनीति तक जिंदगी के हर हिस्से में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो सिर्फ कमरे में बंद दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक संपूर्ण बुद्धिजीवी थे जो सोचते भी थे और फिर वैसा करते भी थे।
हाँ, ये बात ग्रिलिंग हमें रसल की पूरी यात्रा पर ले जाकर दिखाते हैं। उनका वो शानदार लेकिन अकेला सा बचपन, कैम्ब्रिज में विचारों का तूफान, फिर व्हाइटहेड के साथ वो विशालकाय प्रोजेक्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका, युद्ध और शांति पर उनके बदलते विचार, निजी जिंदगी के प्रयोग,
शिक्षा के प्रयोग भी, वो स्कूल,
अरे हाँ, बीकन हिल स्कूल, और आखिर में दुनिया भर में शांति के लिए उनकी लड़ाई। किताब ये दिखाती है कि कैसे उनके विचार और उनके अनुभव एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
हाँ, और किताब रसल को एक तरह से एक प्रेरणा की तरह पेश करती है, ये दिखाने के लिए कि कैसे सोचने समझने वाले लोग इस जटिल दुनिया में कुछ सार्थक कर सकते हैं,
कैसे दिमागी ताकत को असल दुनिया की मुश्किलें सुलझाने में लगाया जा सकता है।
बिल्कुल।
चलिए अब रसल के जीवन और उनके कुछ बड़े विचारों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। शुरुआत उनके बचपन से करें।
हाँ करते हैं। जन्म 1872 में एक बहुत ऊंचे, राजनीतिक रूप से काफी प्रगतिशील घराने में हुआ,
लेकिन बचपन आसान नहीं था।
माँ बाप जल्दी गुजर गए।
हाँ, बहुत छोटी उम्र में।
पालन पोषण दादी ने किया, जो नैतिक रूप से काफी सख्त थी। कहते हैं बचपन काफी अकेला बीता,
और शायद इसी अकेलेपन ने उन्हें गणित की तरफ खींचा। उन्होंने गणित को अपना पहला प्यार कहा।
अच्छा, क्यों?
क्योंकि उसमें भावनाओं की वो अनिश्चितता नहीं थी, एक तर्क की साफ सुथरी दुनिया थी जहां 2+2 हमेशा 4 ही होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं।
समझ आता है। फिर आया कैम्ब्रिज का दौर, जो उनके लिए जैसे एक बौद्धिक आजादी लेकर आया। हाँ बिल्कुल, वहां अपोसल्स नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने, जहां जीई मूर जैसे धाकड़ विचारकों से उनकी दोस्ती हुई,
और मूर के साथ मिलकर उन्होंने उस वक्त के मशहूर आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म के खिलाफ आवाज उठाई।
हाँ, उस समय आदर्शवाद का बड़ा जोर था। ये मानता था कि असलियत तो मन या आत्मा में है।
पर रसल और मूर ने कहा, नहीं, एक बाहरी दुनिया है जो हमारे सोचने से आजाद है। यहीं से विश्लेषणात्मक दर्शन की कहानी शुरू होती है ना?
बिल्कुल, यहीं से नींव पड़ी। कैम्ब्रिज के बाद शुरू हुई उनकी निश्चितता की खोज।
हाँ, वो प्रिंसिपिया मैथमेटिका वाला प्रोजेक्ट।
हाँ, रसेल और उनके पुराने टीचर अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने मिलकर एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी काम शुरू किया। उनका मकसद था ये साबित करना कि पूरा का पूरा गणित सिर्फ लॉजिक यानी तर्क पर टिका है।
मतलब जैसे हर गणितीय सच को कुछ बुनियादी तार्किक नियमों से निकाला जा सकता है।
एग्जैक्टली, ये गणित को एक ठोस, कभी न डिगने वाला आधार देने की कोशिश थी।
लेकिन कमाल देखिए, इसी खोज के दौरान 1901 में रसल ने खुद ही एक ऐसी पहेली खोज निकाली जिसने सबको चौंका दिया, जिसे आज रसल पैराडॉक्स कहते हैं।
हाँ, ये बड़ा मजेदार है।
अब इसकी तकनीकी बारीकियों में जाना तो शायद मुश्किल होगा यहाँ।
हाँ, वो थोड़ा जटिल है,
पर इसका मतलब ये समझिए कि इसने दिखाया कि तर्क और भाषा की अपनी सीमाएं हैं। पूरी तरह से गणितीय निश्चितता जिस पर कोई सवाल ना उठे, शायद वो पाना मुमकिन ही नहीं है।
रसेल के लिए ये एक बड़ा झटका था। उनकी वो निश्चितता की उम्मीद थोड़ी टूट सी गई। इस पैराडॉक्स ने रसेल को और सावधान बना दिया। उन्हें समझ आया कि भाषा कितनी पेचीदा हो सकती है।
और यहीं से उनके कुछ और जरूरी फिलोसॉफिकल टूल्स निकले।
हाँ, जैसे उनकी थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन 1905। ये भाषा के विश्लेषण का एक नया तरीका था। मान लीजिए कोई कहे फ्रांस का वर्तमान राजा गंजा है।
हाँ, पर फ्रांस में तो राजा है नहीं।
सही, तो ये वाक्य सही है या गलत, यह मतलब ही नहीं है। रसल ने दिखाया कि कैसे हम ऐसे वाक्यों का मतलब समझ सकते हैं बिना ये माने कि फ्रांस का राजा सच में कहीं मौजूद है।
अच्छा, ये तो भाषा के जालों को सुलझाने की कोशिश हुई।
बिल्कुल। फिर आया लॉजिकल एटमिज्म का विचार। इस पर उनके होनहार छात्र लुडविग विटकिंस्टाइन का भी असर था।
हाँ, विटकिंस्टाइन का नाम तो सुना है।
ये आइडिया कुछ ऐसा था, क्या हम भाषा को इतने सरल बुनियादी टुकड़ों में तोड़ सकते हैं कि वो सीधे सीधे दुनिया की सच्चाई दिखाए, जैसे शीशे में अक्स दिखता है?
भाषा, तर्क और असलियत के बीच एक एकदम सटीक रिश्ता बनाने की कोशिश।
हाँ, ये समझने की कोशिश थी कि हमारी भाषा दुनिया को कैसे पकड़ती है।
लेकिन रसल सिर्फ ऐसे दिमागी सवालों में ही नहीं उलझे रहे। पहला विश्व युद्ध, वो उनके लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ।
बहुत बड़ा मोड़। 1914-1918 युद्ध की भयानकता ने उन्हें अंदर तक हिला दिया और वे एक अकेडमिक दार्शनिक से बदलकर एक मुखर सामाजिक कार्यकर्ता बन गए।
हाँ, वे जोरदार तरीके से शांतिवादी बन गए और युद्ध का कड़ा विरोध किया।
और इसका नतीजा?
नतीजा, कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से नौकरी गई, समाज में काफी आलोचना हुई, जुर्माना लगा और 1918 में 6 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा।
उसूलों पर टिके रहने की कीमत चुकाई उन्होंने।
बिल्कुल। और कमाल की बात देखिए, जेल में भी उनका दिमाग चलता रहा। वहीं उन्होंने अपनी एक जरूरी किताब लिखी, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलॉसफी।
अरे वाह,
ये दिखाता है कि उनके लिए सोचना और करना ये दो अलग चीजें नहीं थीं। उनकी जिंदगी के ये दोनों पहलू हमेशा साथ साथ चलते थे।
दो विश्व युद्धों के बीच का समय उनके एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पर उभरने का था, है ना?
हाँ, बिल्कुल। उन्होंने शिक्षा पर बहुत कुछ लिखा और अपनी दूसरी पत्नी डोरा ब्लैक के साथ मिलकर बीकन हिल स्कूल नाम का एक अनोखा स्कूल भी शुरू किया।
हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में।
ये स्कूल तर्क, आज़ादी और बच्चों की सहज जिज्ञासा पर जोर देता था। काफी अलग सोच थी उस जमाने के हिसाब से।
बहुत अलग। इसी दौर में उन्होंने कुछ ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने काफी हलचल मचाई, जैसे मैरिज एंड मॉरल्स और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस।
हाँ, ये किताबें तो काफी विवादास्पद रही होंगी उस समय।
बिल्कुल। इनमें उन्होंने उस समय की पारंपरिक सोच को चुनौती दी। शादी, नैतिकता, खुशी, इन सब पर नए ढंग से सोचने की बात की। उन्होंने तर्क पर आधारित एक मानवीय नैतिकता की वकालत की।
और हाँ, उनका मशहूर लेख व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन भी इसी दौर का है।
हाँ, 1927 का। इसमें उन्होंने संगठित धर्म और आंख मूंद कर मान लेने वाली बातों, मतलब डॉगमा, की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमें तर्क और सबूतों पर आधारित नजरिया अपनाना चाहिए।
रसल की जिंदगी बहुत लंबी रही और उनकी सक्रियता बुढ़ापे तक कम नहीं हुई। दूसरे विश्व युद्ध के समय उनके विचारों में एक दिलचस्प मोड़ आया था ना?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाजीवाद के भयानक खतरे को देखते हुए उन्होंने हिचकचाते हुए हिटलर के खिलाफ युद्ध का समर्थन किया।
ये क्या दिखाता है?
उनकी बौद्धिक ईमानदारी। कि वे हालात के हिसाब से अपनी राय बदलने को तैयार थे अगर तर्क उन्हें वहां ले जाए। ऐसा नहीं कि एक बार जो कह दिया उसी पे अड़े रहेंगे।
शीत युद्ध के दौरान वे परमाणु हथियारों के खात्मे के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक बन गए।
हाँ बिल्कुल, 1955 में उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर मशहूर रसेल आइंस्टीन मैनिफेस्टो जारी किया।
इसमें क्या था?
इसमें दुनिया के नेताओं से परमाणु युद्ध के खतरे को खत्म करने की अपील की गई थी। उन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण अभियान CND की स्थापना में मदद की और बाद में कमेटी ऑफ 100 बनाई।
ये कमेटी क्या करती थी?
ये शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा का समर्थन करती थी, मतलब शांति से नियमों का विरोध करना।
और सोचिए, इसी वजह से वे 1961 में 89 साल की उम्र में दूसरी बार जेल गए।
है ना कमाल, इस उम्र में भी उसूलों के लिए लड़ने का जज्बा। उन्हें 1950 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था।
हाँ, उनकी शानदार लेखन शैली और मानवतावादी विचारों के लिए।
सही, तो उनकी स्थायी विरासत क्या है? वो आधुनिक दर्शन के संस्थापकों में से एक हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे तर्क की सफाई और इंसानी जज्बात एक साथ चल सकते हैं।
उनका जीवन इस बात का सबूत है कि एक इंसान अपने विचारों और नैतिक साहस से दुनिया में कितना बड़ा फर्क ला सकता है।
चलिए अब ग्रेलिंग की किताब से उभरने वाले कुछ खास विषयों या संदेशों पर बात करते हैं। अगर रसल के जीवन से आज के लिए एक सबसे जरूरी सबक लेना हो तो वो शायद है बौद्धिक ईमानदारी का साहस।
हाँ, मतलब सच के पीछे जाना, चाहे वो कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो,
और अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहना अगर सबूत या तर्क आपको कहीं और ले जाएं।
हाँ, ये बात तो है। और दूसरा बड़ा सबक है ज्ञान और कर्म की एकता, जैसा आपने पहले भी कहा था।
हाँ, रसल ने सिखाया कि सोचना और करना अलग अलग नहीं है, तर्क को असल दुनिया की समस्याओं पर लागू करना चाहिए।
आज भी ये सवाल उठता है कि जो लोग जानकार हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे समाज की भलाई के लिए अपनी जानकारी का इस्तेमाल करें?
बिल्कुल। तीसरा है तर्क संगत जांच की अहमियत। रसेल का मानना था कि मुश्किलों को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है तर्क और विश्लेषण।
भावनाओं में बहने या सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय चीजों को ठंडे दिमाग से देखना।
हाँ, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी, चाहे वो घर के फैसले हों या ऑफिस के, कैसे ज्यादा लॉजिकल हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।
फिर आता है बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी का विचार। रसेल मानते थे कि ज्ञान के साथ समाज को बेहतर बनाने की नैतिक जिम्मेदारी भी आती है।
सिर्फ अपनी स्टडी में बैठे रहना काफी नहीं, आइवरी टावर से बाहर निकलना जरूरी है।
ये आज भी बड़ा सवाल है, क्या पढ़े लिखे लोगों की समाज के प्रति कोई खास जिम्मेदारी होती है या होनी चाहिए?
और एक और अहम बात, रसेल का मानवतावाद और हर तरह की कट्टरता यानी डॉगमा का विरोध। उनका सारा जोर इंसानी तरक्की, खुशी और आजादी पर था।
वे हर तरह के अंधविश्वास और कट्टर विचारधाराओं के खिलाफ थे, चाहे वो धार्मिक हों या राजनीतिक।
आज भी जब हम समाज में कट्टरता देखते हैं तो रसेल की तर्कपूर्ण आवाज याद आती है।
रसेल के कुछ कथन तो बहुत यादगार बन गए हैं, जैसे उनका वो कहना।
हाँ, वो वाला,
दुनिया के साथ समस्या ये है कि मूर्ख और कट्टरपंथी हमेशा खुद को लेकर निश्चित होते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग संदेह से भरे होते हैं।
ये कितनी बड़ी बात है, कट्टरता हमेशा अंधे यकीन से आती है, जबकि समझदारी में थोड़ी हिचक, थोड़ा संदेह हमेशा रहता है।
हाँ, और उनका वो सूत्र वाक्य कि अच्छा जीवन वो है जो प्रेम से प्रेरित हो और ज्ञान द्वारा निर्देशित हो,
ये सिर्फ दिमाग या सिर्फ दिल की बात नहीं करता, बल्कि दोनों के संतुलन की बात करता है।
बिल्कुल, प्यार रास्ता दिखाए और ज्ञान उस रास्ते पर चलना सिखाए, यही एक अच्छे जीवन का आधार है।
युद्ध के बारे में उनका ये कथन भी सोचने पर मजबूर करता है, युद्ध ये तय नहीं करता कि कौन सही है, केवल ये कि कौन बचा है।
कितनी सीधी और सच्ची बात है, युद्ध सिर्फ विनाश लाता है, वो किसी समस्या का हल नहीं है। उंगु न होना, यही दर्शन का उद्देश्य है।
मतलब ये मानना कि हमें सब कुछ पक्के तौर पर नहीं पता।
हाँ,
लेकिन फिर भी हार मानकर बैठना नहीं है, हमें तर्क के सहारे उपलब्ध जानकारी के आधार पर आगे बढ़ते रहना है।
रसेल के इन विचारों को हम आज के जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, ये अहम सवाल है।
हाँ, सबसे पहले तो आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग अपनाना।
किसी भी बात पर, किसी भी खबर पर आंख मूंद कर यकीन न करना।
हाँ, सवाल पूछना, सबूत मांगना। रसेल ने वो एक मजेदार उदाहरण दिया था आसमानी चायदानी का, सेलेस्टियल टीपॉट।
हाँ हाँ, सुना है।
उन्होंने कहा, अगर मैं कहूँ कि सूरज के चारों ओर एक चायदानी चक्कर लगा रही है जो इतनी छोटी है कि दिखती नहीं, तो ये साबित करना मेरी जिम्मेदारी है कि वो है, ना कि आपकी कि वो नहीं है।
मतलब जो दावा करे सबूत भी वही दे।
हाँ,
आज के फेक न्यूज के दौर में ये सोच कितनी जरूरी है।
बहुत जरूरी। दूसरी बात है बौद्धिक ईमानदारी, अपनी गलती मानने की हिम्मत रखना।
उन लोगों की बात भी सुनना जिनसे हम सहमत नहीं हैं, अपने पूर्वाग्रहों, अपने बायसेस को पहचानने की कोशिश करना।
हाँ, क्या हम वाकई किसी मुद्दे के दोनों पक्ष जानने की कोशिश करते हैं या सिर्फ वही सुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है? रसल हमें ये सवाल खुद से पूछने को कहते हैं।
तीसरा, तार्किक विश्लेषण से समस्याओं को सुलझाना।
जैसे रसल करते थे, बड़ी उलझी हुई समस्या को छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ना, तथ्यों को मान्यताओं से अलग करना।
ये तरीका सिर्फ किताबी नहीं है, इसे हम अपनी रोज की मुश्किलों को सुलझाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
बिल्कुल। और चौथा है, उसूलों पर टिके रहने का साहस।
जो सही लगता है उसके लिए खड़े होना, उसके लिए आवाज उठाना, भले ही ऐसा करना मुश्किल हो या अकेले पड़ जाने का डर हो।
हाँ, रसल की जिंदगी दिखाती है कि नैतिक साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं।
और आखिर में, तर्क और जुनून का संतुलन।
हाँ, रसल का जीवन दिखाता है कि सोचने समझने वाला इंसान होने का मतलब ये नहीं कि आप भावनाओं या रिश्तों को नजरअंदाज कर दें।
सीखना, सोचना, तर्क करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है प्यार करना, करुणा रखना, दूसरों के दुख को महसूस करना।
दिमाग बनाम दिल का झगड़ा झूठा है, एक भरपूर जिंदगी के लिए दोनों का साथ चलना जरूरी है।
तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक क्या लगता है?
मेरे लिए शायद ये कि दिमागी ताकत का असली मोल तभी है जब उसका इस्तेमाल इंसानों की भलाई और आपसी समझ बढ़ाने के लिए हो।
सही कहा।
रसेल ने जैसे दिखाया, तर्क और करुणा साथ साथ चल सकते हैं, बल्कि चलने चाहिए।
और मेरे लिए एक खास बात यह है कि उसूलों के लिए खड़े होने और उसकी कीमत चुकाने का साहस रखना एक सच्चा और सार्थक जीवन जीने के लिए कितना जरूरी है। बाहरी मुश्किलें चाहे जितनी हो, अगर आप सच के साथ हैं तो अंदर एक ताकत महसूस होती है। हाँ, और रसेल का उदाहरण ये भी याद दिलाता है कि सोचना और करना ये दो अलग दुनिया नहीं है। आज के इस उलझे हुए समय में, जहाँ समस्याएं ग्लोबल हैं, जहाँ सूचनाएं हद से ज्यादा हैं, वहाँ रसेल के तर्क करने की हिम्मत, उनकी बौद्धिक ईमानदारी और दुनिया के लिए उनकी चिंता शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है।
बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जहाँ अक्सर लगता है कि भावनाएं तर्क पर हावी हो रही हैं, जहाँ सोशल मीडिया पर लोग इतने बटे हुए हैं, क्या वहाँ रसेल की तरह तर्क और करुणा को संतुलित करना संभव है? और अगर हाँ तो कैसे?
हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।